वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं, आठवां स्कंध, बारहवां अध्याय, मोहिनी मूर्ति पर शिवजी का मोहित होना, श्लोक संख्या 36। अथ अवगत महात्म्य आत्मनः जगत आत्मनः अपरिज्ञेय वीर्यस्य न मेने तत् उह अद्भुतम्। अथावगत महात्म्य आत्मनो जगतात्मनः अपरिज्ञेय वीर्यस्य न मेने तदुहाद्भुतम्। आद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। इस प्रकार शिवजी को अपनी तथा असीम शक्तिमान भगवान की स्थिति का बोध हो गया। इस ज्ञान को प्राप्त होकर उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान विष्णु के किस अद्भुत विधि से उन पर माया की थी। तात्पर्य, भगवान सर्वशक्तिमान कहलाते हैं क्योंकि कोई उन्हें किसी कार्य में पिछाड़ नहीं सकता। भगवद गीता में सातवें अध्याय के सातवें श्लोक में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया। हे धन के विजेता, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। कोई न तो भगवान की बराबरी कर सकता है, न ही कोई उनसे बढ़कर है, क्योंकि वे सबके स्वामी हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में आदिलीला पांचवें अध्याय के 142वें श्लोक में कहा गया है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान कृष्ण सबके, यहाँ तक कि शिवजी के भी एकमात्र स्वामी हैं। तो फिर अन्यों के लिए क्या कहा जाए। शिवजी पहले से भगवान विष्णु की परम शक्ति से अवगत थे, किंतु जब वे सचमुच मोह में पड़ गए तो उन्हें अपने महान स्वामी पर गर्व हुआ। अनुवाद को दोहराइए। इस प्रकार शिवजी को अपनी तथा असीम शक्तिमान भगवान की स्थिति का बोध हो गया। इस ज्ञान को प्राप्त होकर उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान विष्णु ने किस अद्भुत विधि से उन पर माया की थी। ओम अज्ञान तिमिरांध हरे कृष्णा। तो दैनिक क्रम से जो अभी श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा है यहाँ राधा गोकुलानंद मंदिर में, इस समय प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान श्री हरि ने अपने मोहिनी मूर्ति रूप धारण करके शिव जी को पूरी तरह से मोहित कर दिया है और शिव जी को जब ज्ञात हुआ कि उनका स्थान क्या है और भगवान का स्थान क्या है तो उनको डर नहीं लगा, उनको द्वेष या ईर्ष्या नहीं हुई, उनको क्रोध नहीं आया, बल्कि उनको आनंद आया कि देखो मेरे स्वामी मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण या विष्णु कितने महान हैं कि मुझे भी उन्होंने इस प्रकार मोहित कर दिया। ऐसे साधारण देखा जाता है कि लोगों में ये स्पष्ट ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है, भगवत तत्व क्या है, किसी को भी भगवान मान लेते हैं। और भारत में देखा जाता है कि विशेष करके कई लोग दुर्गा को परम सत्य मानते हैं, कोई काली को, कोई गणेश को, कोई शिव जी को। तो शैव संप्रदाय के भी अनेक हैं जिनमें शिव जी को श्रेष्ठ मानते हैं कि शिव जी ही सर्वश्रेष्ठ है, वो भगवान है, उनसे कोई ऊपर या बड़ा नहीं है। परंतु शिव जी स्वयं ऐसा नहीं मानते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, पहले से शिव जी को ज्ञात था कि भगवान कौन है, उनका स्थान क्या है, लेकिन फिर भी उनको जब भी अनुभव हुआ कि वो मोहिनी मूर्ति द्वारा मोहित हो गए तो इस ज्ञान का और भी साक्षात्कार उनको हो गया और इस साक्षात्कार के साथ उनको और भी आनंद मिल गया। तो यहां पे शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं अथ, मतलब इस प्रकार से अवगत, ज्ञान हो गया, उनको आश्वस्त हो गए, उनको ज्ञान हो गया। क्या हो गया ज्ञान? महात्म्य आत्मनो जगत आत्मनः, जगत के आत्मा जो है भगवान का महात्म्य क्या है, इनकी महानता क्या है, और साथ साथ आत्मनः अपना भी स्थान क्या है, मेरी भी महानता कहाँ तक सीमित है, दोनों का जो महात्म्य है उनकी महानता है वो तुलनात्मक रूप से समझ गए। अपरिज्ञेय वीर्यस्य, ये भगवान को संबोधित करता है जिनकी शक्ति असीम है। असीम शक्तिमान व्यक्ति को अपरिज्ञेय वीर्य कहते हैं। न मैंने तद उह अद्भुतम, और वास्तव में देखो भगवान ने कितने अद्भुत ढंग से मुझे वश में कर लिया, मुझे परास्त कर दिया, मुझे माया के जाल में डाल दिया। कितने अद्भुत हैं भगवान। जब हम कहते हैं कि शिवजी भगवान नहीं है तो हमें शिवजी को कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं मानना चाहिए, ये दूसरा भ्रम है। एक गलत धारणा ये है कि शिवजी भगवान है, दूसरी गलत धारणा ये है कि दूसरी ओर हमें जाकर ये नहीं कहना चाहिए अरे शिवजी तो कोई साधारण व्यक्ति है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। शिवजी का स्थान तो बहुत विशेष है, बहुत शक्तिमान है वो। जब श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हैं तो वो 64 प्रमुख गुणों का उल्लेख करते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुण हैं। भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते करते अनादि काल से अनंत शेष ने अभी तक वर्णन समाप्त नहीं किया है। और अभी तक वो करते जा रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे, फिर भी समाप्त नहीं होगा। तो भगवान के गुण अनंत हैं, फिर भी श्रील रूप गोस्वामी ने सारे शास्त्रों का अध्ययन करके उनसे सार निकाला है और जो उनके प्रमुख 64 गुण हैं उनका मात्र उन्होंने उल्लेख किया है और संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। फिर रूप गोस्वामी पहले 50 गुणों का वर्णन करते हैं श्री कृष्ण के, और इनका वर्णन करने के बाद वो कहते हैं जीवे श्वेपे वसंतोपि, कि जीव के अंदर भी निवास करते हैं। क्या निवास करते हैं? कोई ऐसे गुण है विशेष रूप से जो निवास करते हैं, जो कि कृष्ण के अंदर है, परंतु किस मात्रा में जीव में निवास करते हैं? बिंदु बिंदु तया क्वचित परिपूर्णतया भाति तत्रैव पुरुषोत्तमे। तो वो कहते हैं कि ये जो 50 गुण हैं जिनका वर्णन मैं अभी कर चुका हूं, रूप गोस्वामी कहते हैं जीवेश्वेपे वसंतोपि, ये जीवों में भी निवास करते हैं ये 50 गुण, परंतु बिंदु बिंदु तया क्वचित। यहां पे दो चीजें हैं, बिंदु तया और क्वचित, मतलब ये 50 गुण जो श्री कृष्ण के अंदर हैं ये साधारण जीवात्माओं में भी हैं, परंतु क्वचित, कभी प्रकट होते हैं कभी नहीं होते हैं। क्वचित मतलब कभी कभी, कभी ये गुण दिखाई पड़ते हैं जीव में, कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं, और जब दिखाई भी पड़ते हैं कितना दिखाई पड़ता है? बिंदु तया, बूंद मात्र। अगर भगवान समुद्र के समान है तो जीव बूंद के समान है। तो क्योंकि जीव भगवान का अंश है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो गुण हैं वो जीव के अंदर भी हैं, परंतु बिंदु बिंदु तया, और वो भी क्वचित, कभी कभी प्रकट होते हैं कभी नहीं होते हैं। परंतु भगवान में कैसे? परिपूर्णतया भांति तत्रैव पुरुषोत्तमे। तो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंदर परिपूर्णतया भांति, पूर्णतया शत प्रतिशत ये गुण विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार से जीवों के जो 50 गुण होते हैं उनका वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण के 64 गुणों का वर्णन करते करते पहले 50 गुणों का वर्णन इस प्रकार से रूप गोस्वामी करते हैं। फिर वो कहते हैं अथ पंचगुणा ये स्युर अंशेन गिरीशादिशु। वो कहते हैं कि अथ तत्पश्चात, मतलब इसके बाद, इसके अतिरिक्त जो 50 गुणों का उल्लेख मैंने किया है, इनके अतिरिक्त और 5 गुण श्री कृष्ण में हैं, और ये 5 गुण शिवजी में भी हैं। शिवजी आदि गिरीश आदिशु, गिरीश मतलब शिवजी, आदि मतलब ब्रह्मा जैसे महान कोई देवता होंगे। तो गिरीश आदिशु, गिरीश शिवजी आदि में ऐसे 5 गुण भी हैं जो कृष्ण में हैं, लेकिन अंशेन, अंश मात्र ही है, पूर्णतया नहीं। भगवान श्री कृष्ण में तो ये 55 गुण पूर्णतया है, परंतु शिवजी में ये अतिरिक्त जो 5 गुण हैं वो भी अंश मात्र है। तो कौन से हैं वो 5 गुण? फिर चैतन्य चरितामृत में भी महाप्रभु बतलाते हैं, वो 5 गुणों का वर्णन करते हुए हम सबको समझाते हैं कि वास्तव में शिव जी का स्थान क्या है। शिव जी का स्थान भगवान का स्थान नहीं है, शिव जी का स्थान बीच का स्थान है। शिव जी को शक्ति तत्व कहते हैं। शक्ति तत्व का मतलब है कि वो भगवान के, या शिव तत्व कहते हैं, शक्ति तत्व और विष्णु तत्व के बीच में है। शक्ति तत्व है जैसे भगवान के अनेक शक्तियां हैं, उनमें से प्रमुख हैं श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी से उनके अनगिनत शक्तियां उत्पन्न होती हैं। और उधर दूसरी ओर है जीव तत्व, जैसे हम सब जीव तत्व हैं, परंतु शिव जी का स्थान विशेष है। भगवान के एक रूप है वैकुंठ में जो विष्णु रूप है, चतुर्भुज रूप है, जिनको सदाशिव कहते हैं। तो भगवान सदाशिव के विस्तार हैं शिव जी। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वो भगवान के अवतार हैं, परंतु वो इस भौतिक जगत का स्पर्श करते हैं, विशेष करके तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, इसलिए वो विष्णु के श्रेणी में नहीं माने जाते, अलग ही माने जाते हैं। आप सब इस तुलना को तो जानते हैं, उपमा को जानते हैं, दूध और दही का। दूध और दही की उपमा क्या है कि भगवान श्री कृष्ण दूध के समान है और शिव जी दही के समान है। जब दूध में कोई विकार डाला जाता है, जैसे नींबू के रस का एक बूंद भी डाला जाता है, तो उस दूध का विकार दही में हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उसी प्रकार से शिव जी के बारे में वर्णन किया गया है, सदा स्वरूप संप्राप्त सर्वज्ञो नित्य नूतन सच्चिदानंद सांद्रांग सर्वसिद्धि निषेवित। ये महाप्रभु वर्णन करते हैं, ये जो पंच गुणा, ये जो पांच गुण है जो कृष्ण में है, जो जीवों में नहीं है, कृष्ण में पूर्णतया है और अंश मात्र शिव जी में है। तो कौन सा है ये पांच गुण? सदा स्वरूप संप्राप्त, वो सदैव अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, परंतु याद रखना है अंशेन, मतलब शत प्रतिशत हमेशा के लिए अपने स्वरूप में स्थित होते हैं ऐसा नहीं है। और ये जो लीला है ये इसका प्रमाण है। हालांकि शिव जी साधारणतः अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, फिर भी कभी कभी जब भगवान के माया शक्ति का सामना उनको करना पड़ता है तो वो अपने स्वरूप से हिल जाते हैं। शिव जी वैसे धीर पुरुष कहलाते हैं, देवताओं ने उनको विचलित करने का बहुत प्रयास किया था, परंतु शिव जी डगमगा नहीं गए थे, विचलित बिल्कुल नहीं हुए थे, इसलिए उनको धीर पुरुष कहते हैं। लेकिन ऐसे धीर पुरुष भी भगवान की मोहिनी मूर्ति के सामने पूरी तरह से डावाडोल हो गए, इसलिए अपने स्वरूप को कायम नहीं रख पाए। तो हालांकि यह वर्णन किया हुआ है सदा स्वरूप संप्राप्त है कि शिवजी हमेशा अपने स्वरूप के स्थिति में रहते हैं, स्वरूप को बनाए रखते हैं, फिर भी यह अंशेन शब्द महत्वपूर्ण है, जिससे हम जान सकते हैं कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु जितना वो अपना स्वरूप को बनाए नहीं रख सकते। जीव की तो बात ही नहीं है, जीव तो अणु है, कभी भी माया की चंगुल में फंस सकता है। फिर दूसरी बात क्या बताते हैं? सर्वज्ञ है कि भगवान शिव जो है वो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ नित्य नूतन है। उनका शरीर भी हमेशा युवक का शरीर रहता है, फ्रेश रहता है, ताजा रहता है। जिस प्रकार से हम श्री कृष्ण की कोई तस्वीर या कोई मूर्ति बुढ़ापे की अवस्था में नहीं देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से शिव जी को भी हम कभी बूढ़ा नहीं देखते हैं। आपने कभी तस्वीर देखी है शिव जी की, सफेद सफेद दाढ़ी या सफेद बाल या बूढ़े अवस्था में? शिव जी को कभी ऐसे नहीं देखा होगा जैसे कृष्ण को नहीं देखते हैं। सर्वज्ञ नित्य नूतन, फिर सर्वज्ञ सच्चिदानंद सांद्रांग, सांद्र मतलब घना, अंग मतलब उनका शरीर, तो उनका शरीर घना रूप है सच्चिदानंद का। हम तो सुन चुके हैं कि ईश्वर परम है कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि कृष्ण सच्चिदानंद के विग्रह हैं, रूप हैं, तो शिवजी भी हैं घने रूप, वो भी सच्चिदानंद के, सच्चिदानंद सांद्रांग है। फिर इस पे ये अंशेन शब्द महत्वपूर्ण है कि साधारणतः शिवजी का शरीर सच्चिदानंद है, लेकिन श्री कृष्ण की तरह बिल्कुल नहीं, अंतर थोड़ा बहुत है। तो सच्चिदानंद सांद्रांग है। और बाद में सर्व सिद्धि निषेवित, मतलब सारी सिद्धियां जो योगी जन प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी तपस्या करते हैं, वो सारी सिद्धियां सदैव शिवजी के सेवा में उपस्थित रहते हैं। वो उनकी सेवा करते हैं शिव जी की। अर्थात शिव जी के पास ये सारे योग की सिद्धियां हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो शिव जी भी एक प्रकार से योगेश्वर हैं, परंतु कृष्ण जैसे योगेश्वर नहीं है। कृष्ण के पास जो सिद्धियां हैं वो 100% उनके वश में है, लेकिन कभी कभी शिव जी के पास जो सिद्धियां हैं वो फेल कर जाती हैं, कभी कभी असफल हो जाती है कृष्ण के सामने। जब उनको कृष्ण का सामना करना पड़ता है तो फिर वो योग शक्ति सफल नहीं होती है। जैसे कि शिव जी के एक उपासक थे जिनका नाम था बाणासुर। शिव जी की कृपा से अनेक वरदान मिले थे और बहुत शक्तिमान थे ये बाणासुर। अनेक सर भी थे, अनेक भुजाएं थे। तो जब श्री कृष्ण का युद्ध बाणासुर से हुआ तो श्री कृष्ण सारे भुजाओं को एक के बाद एक काटने लगे, तो शिव जी को बहुत क्रोध आया, परंतु वो कुछ नहीं कर पाए। उसी प्रकार से जब शिव जी के एक अन्य उपासक काशीराज, काशी के राजा, वो भी श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध करने आए तो भगवान ने उनको आसानी से मार दिया और उनका जो सर है काशीराज को काशर, वो अपने तीर से उड़ाकर सीधे काशी में ही भेज दिया, दूर द्वारका से काशी भेज दिया, और वो सर उड़ते उड़ते काशी में आके गिर पड़ा। और सारे लोग सोचने लगे कि ये हमारे राजा के शत्रु का सिर है, जो कि हमारे राजा ने तोहफा समझ के यहाँ लाया है। फिर बाद में उन्होंने पहचान लिए कि हमारे राजा का ही सर है ये। तो इस प्रकार से शिवजी की सिद्धियां, शिवजी की शक्ति भी जब भगवान के सामने आती हैं तो पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती हैं। तो फिर भी ये शिवजी के 5 विशेष गुण हैं जो जीवों में नहीं रहते, अंश मात्र उनके पास होते हैं। साथ साथ में महाप्रभु कहते हैं कि विष्णु का जो नारायण का स्तर है वो शिवजी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे और 5 गुण विशेष करके होते हैं जो शिवजी में नहीं होते हैं। एक है उनकी अद्भुत शक्ति है, महाशक्ति, जो शिवजी में भी नहीं है। दूसरा है कोटि ब्रह्मांड विग्रह, कि उनके शरीर से कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर साथ साथ अवतार, अवतारावली बीजम, वो सारे अवतारों के उद्गम हैं नारायण या विष्णु, उनके माध्यम से ही सब यहाँ पर प्रकट होते हैं। साथ साथ हतारी गतिदायक, हत अरी, अरी मतलब शत्रु, तो जब वो उनके शत्रुओं की हत्या करते हैं तो गति, कौन सी गति, मुक्ति की गति दायक प्रदान करते हैं। तो अपने शत्रुओं की हत्या करके उनको मुक्ति की गति प्राप्त कराने वाले हैं विष्णु, शिव जी नहीं कर सकते, ये केवल विष्णु में है। तो हतारी गति दायक है। और साथ साथ में भगवान विष्णु के ऐसे गुण हैं जो शिवजी में नहीं हो सकते, नहीं पाए जाते। वैसे कृष्ण में और भी 4 गुण हैं जो विष्णु में नहीं है। वो कौन से हैं 4 गुण बताइए? लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। लीला, प्रेम, वेणु और रूप, ये 4 माधुरी हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा ऐसे सुंदर लीलाएं करते हैं जिनसे सारे सृष्टि का मन आकर्षित हो जाता है। सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि ही। तो अपने श्री कृष्ण एक सागर के समान है जिसमें लीला रूपी लहरें बह रही हैं और जो सारे विश्व को चमत्कार दिलाती हैं। साथ साथ में प्रेम माधुरी का मतलब है कि श्री कृष्ण हमेशा ऐसे प्रेमी भक्तों से घिरे हुए होते हैं, विशेष करके गोपियां जो कि माधुरी रस में उनके साथ आदान प्रदान करती हैं। और साथ साथ में त्रिजगत मनस आकर्षी, कि त्रिजगत को, तीनों भुवनों को वो आकर्षित करते हैं अपने कल वेणु से, अपने वेणु के गीत से, तो वेणु माधुरी, और साथ साथ में उनका रूप, उनका सौंदर्य। तो ये सब चीजें हैं श्री कृष्ण में, जो नारायण में भी नहीं है, तो शिव जी की बात तो दूर है। तो इससे तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि शिव जी का स्थान क्या है, विष्णु का स्थान क्या है, कृष्ण का स्थान क्या है। इसलिए यहां अथ अवगत महात्म्य आत्मनो जगत आत्मनः, शिव जी अवगत हो गए मेरी महानता कहां तक सीमित है, विष्णु की महानता या भगवान की महानता क्या है, तो तुलनात्मक ढंग से जान गए। वैसे देखा जाए तो कृष्ण की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। समझिए कि यहां पे एक बूंद पानी है, वहां पर एक चार पांच बूंद पानी है, यहां पर 15-20 बूंद पानी है, यहां पर एक ग्लास में पानी है, यहां पर एक बाल्टी में पानी है, और यहां पर एक छोटा सा सरोवर है या कुआं है। तो इन सब की तुलना आप कर सकते हैं। हालांकि कुएं में जो पानी है और जो एक बूंद मात्र पानी है उसमें बहुत अंतर है, फिर भी थोड़ा बहुत तुलना तो किया जा सकता है ना। हम कह सकते हैं ये तो एक बूंद है, वो तो कुआं भर के पानी है। परंतु इस एक बूंद की पानी, एक बूंद जो पानी है, उसकी तुलना आप सागर से कर सकते हैं? ये कोई तुलना है? तुलना कहने लायक है? हो नहीं सकता। कैसे तुलना कर सकते हैं एक बूंद में और समुद्र में? वास्तव में नहीं तुलना किया जा सकता। तो उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण के साथ अन्यों की तुलना की जाती है, जब यह कहा जाता है कि श्री कृष्ण असमान ऊर्ध्व हैं, कि उनके न कोई समान है और न उनसे कोई बढ़कर है, श्री कृष्ण सबसे महान है, यह कहने के लिए कहा गया है शास्त्रों में, लेकिन वास्तव में तुलना तो नहीं की जा सकती श्री कृष्ण की। जैसे कि समुद्र की तुलना ऐसे एक बूंद पानी, चार बूंद पानी, एक बाल्टी पानी से नहीं किया जा सकता। अभी हमें समुद्र का अनुभव पूरा नहीं है, इसलिए हमारे लिए एक बाल्टी पानी बहुत ज्यादा होता है, एक बाल्टी उठाने के लिए भी बहुत कष्ट होता है। और समुद्र में कितना पानी है, प्राय असीमित है, और ये भी तुलना इसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण वास्तव में असीमित है। समुद्र के लिए भी तो कोई तो सीमा होती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई भी सीमा नहीं है। फिर भी हमारी बहुत भौतिक बुद्धि जो है कि आदत है कि हम तुलना देखते रहते हैं। अच्छा, ये अमीर है, कितना अमीर है वो, इसके पास कितने लाख है, उसके पास 10 लाख, इसके पास कितने हैं, 4 लाख, अच्छा अच्छा ठीक है, ये 4 वाला है या 10 वाला है, इसके पास कितने गाड़ी है, 2 है, अच्छा इसके पास 4 है, ठीक है, ये कौन सी कक्षा, ये 4थी में, अच्छा ये 10वीं में, ठीक है, समझ गए। तो हमारी भौतिक बुद्धि जो है इसकी आदत पड़ गई है तुलना करना, नापतोल करना, ये इतना है वो उतना है। इसलिए शास्त्रों में तुलनात्मक दृष्टि से कभी कभी कृष्ण के बारे में ज्ञान दिया जाता है, ये सबसे महान है, सबसे बड़े हैं, इनकी तुलना में कोई नहीं है। लेकिन ये केवल हमारे बुद्धि के लिए है। गीता में भी भगवान बताते हैं सारे मृगों में, पशु में से मैं शेर हूं, सिंह हूं। तो क्या भगवान कृष्ण सिंह हैं? वो कहते सारे पर्वतों में से मैं हिमालय हूं, तो क्या श्री कृष्ण हिमालय हैं? सारे जितने भी नक्षत्र उनमें से मैं चांद हूं, नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में से मैं चांद हूं, तो क्या भगवान केवल चांद तक सीमित हैं? भगवान बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी ऐश्वर्यशाली चीजें हैं वो उनकी विभूतियां हैं, वो उनको संबोधित करते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति, उनकी महिमा जो है उन्हीं से आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण को केवल हम सिंह में देख सकते हैं और उसको खरगोश में नहीं देख सकते, खरगोश में भी देख सकते हैं। खरगोश की शक्ति भी भगवान कृष्ण से आती है, सिंह की शक्ति भी भगवान कृष्ण से आती है, परंतु सबसे ऐश्वर्यशाली जो पशु है, सबसे शक्तिमान, वो सिंह है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हर श्रेणी में जो भी कुछ आप सबसे श्रेष्ठ देखते हो उसको देखकर मुझे याद करो, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। सिंह कहां और कृष्ण कहां, चांद कहां कृष्ण कहां। फिर भी एक हमारी बुद्धि को थोड़ा कुछ समझाने के लिए भगवान गीता में भी ऐसा कहते हैं। तो असमान ऊर्ध्व शब्द का यह तात्पर्य होता है। और शिव जी को इस बात का ज्ञान अभी हुआ है, था भी, अभी अच्छा साक्षात्कार हुआ है कि हालांकि शिव जी धीर हैं, हालांकि शिव जी की इतनी शक्ति, ये पास पांच विशेष गुण हैं जो कि जीवों में नहीं हैं, वो अवतार हैं भगवान के, गुण अवतार माने जाते हैं, फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण के माया का सामना वो करना चाहते हैं तो वो सामना नहीं कर पाते हैं। तो ये हमें ज्ञान अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। तो शिव जी कि ये पांच गुणों, अधिक पांच गुणों के होने की वजह से हमारे लिए वो पूजनीय है। और विशेष करके वो हमारे लिए पूजनीय इसलिए हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। कि जिस प्रकार से नदियों में से सर्वश्रेष्ठ गंगा है, देवों में से सर्वश्रेष्ठ अच्युत या श्री कृष्ण हैं, और वैष्णव में से सर्वश्रेष्ठ शिव जी हैं, उसी प्रकार पुराणों में से ये श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। तो ऐसे भागवत की महिमा का वर्णन करते करते शिव जी की महिमा का वर्णन भी हो चुका है कि वो सबसे महान वैष्णव हैं। इसलिए हम शिव जी को बड़ा सम्मान करते हैं और शिव जी की कृपा की याचना भी हम करते हैं, परंतु शिव जी को कभी एक स्वतंत्र भगवान नहीं मानना चाहिए। शिव जी भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। उनकी भी शक्ति, ये जो विशेष पांच गुण उनके अंदर हैं जो जीवों में नहीं है, वो पांच गुण भी श्री कृष्ण से ही आते हैं। वो श्री कृष्ण के उपासक हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामाभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। शिवजी दुर्गा देवी से कहते हैं कि मैं तो हमेशा राम 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 इन पवित्र नामों का उच्चारण करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करता हूं हे देवी। यह राम मतलब संकर्षण भगवान। शिवजी विशेष करके संकर्षण भगवान के भी भक्त है। लेकिन जब भगवान कृष्ण वृंदावन में आते हैं तो शिव जी सोचते हैं कि अरे, ये इतना सुंदर रूप भगवान का है और इतने सुंदर लीलाएं और इतने सुंदर भक्त उनको घेर के रखे हैं और ऐसी बांसुरी बजाते हैं श्री कृष्ण, तो मैं भी श्री कृष्ण के वृंदावन लीला में शामिल होना चाहता हूं और विशेष करके मैं भगवान के रास लीला में आना चाहता हूं। तो शिव जी के मन में ऐसी अभिलाषा उत्पन्न हुई, तो वो आना चाहते थे। लेकिन जब रासलीला के बाहर आए, तब द्वार पे आए तो उनको रोका गया, नहीं आप नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं, मैं तो शिव जी हूं। हालांकि उन्होंने ज्यादा तो अपना परिचय नहीं दिया होगा, जो वैष्णव होते नम्र होते हैं, अपना परिचय लंबा नहीं देते कभी कि मैं नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं ये हूं मैं वो हूं, नहीं। लेकिन शिव जी को लगा अरे मुझे रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, मैं भी कृष्ण का भक्त हूं ना, मैं भी जाना चाहता हूं। का नहीं, यह रासलीला में प्रवेश केवल गोपियों को है। अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा अंदर जाने के लिए? आपको गोपी बनना होगा। मुझे गोपी बनना होगा, स्त्री बनना होगा? हाँ। तो फिर उन्होंने जाके मानसी गंगा में स्नान किया, उनको गोपी का रूप मिल गया और फिर वो अंदर प्रवेश कर सके। और आज भी जो विशेष रूप शिव जी का है उनको क्या कहते हैं? गोपेश्वर महादेव। तो गोपेश्वर महादेव वृंदावन में हैं, रासलीला के स्थली के पास में ही शिव जी कृष्ण की सेवा करने के लिए, वृंदावन धाम की रक्षा करने के लिए, कृष्ण की लीला का स्वाद लेने के लिए वहां पर गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। यहां ब्रज में शिव जी कई जगह विराजमान है, ये तो एक अलग विषय हो गया, परंतु एक ही बस हम छोटी सी लीला बताना चाहेंगे। जो आप में से जो वृंदावन परिक्रमा या यात्रा में आए हैं, आपने सुना होगा, वो है कि भगवान शिव जी सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ने पर्वत का रूप धारण करके राधा रानी की सेवा की है और वहां राधा कृष्ण की लीला में वो शामिल हो चुके हैं। तो ब्रह्मा जी ने तो वो कैप्चर कर लिया, वो सेवा बरसाना में वो पहुंच गए। अब मैं कहां जाऊंगा? तो मुझे चाहिए एक स्थान, हाँ नंदग्राम में मैं जाऊंगा जहां भगवान श्री कृष्ण के पिताजी रहते हैं। तो शिव जी वहां पर पहुंच गए और वो पर्वत बन गए। जैसे ब्रह्मा जी बरसाना में पर्वत बन गए, वैसे शिव जी यहां नंदगांव में पर्वत बन गए, नंदीश्वर पर्वत। और फिर वो सोच रहे थे कि चलो अभी श्री कृष्ण यहां पे आए हैं तो मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करना होगा। तो दर्शन के लिए गए, बेचारे शिव जी को बार बार रोका जाता है, रासलीला में भी रोका, यहां भी रोका गया। यशोदा मैया ने देखा कि अरे ये कौन है, बड़े योगी हैं और शरीर में सारे स्मशान भूमि का रज सब लेप लगाया हुआ है, सांप वाप है, ये कौन है, सब भयानक योगी लग रहा है, जटाएं हैं सर में और डमरू बजाते आ रहा है, बड़ा भयानक दिखने के लिए, हम ही डर रहे हैं तो मेरा लाडला बच्चा जो है वो क्या करे, वो तो रोने ही लग जाएगा, बहुत डर जाएगा, इसलिए अब मैं इसको अंदर नहीं छोड़ूंगी। ए बाबा क्या चाहिए तुमको? नहीं मैं आपके लाला का दर्शन करना है। नहीं नहीं नहीं, लाला का दर्शन नहीं करो, वो रो जाएगा, जाओ 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 यहाँ से जाओ। अरे नहीं माता मैं दर्शन करना चाहता हूँ। क्या रोटी चाहिए ना, माधुकरी करने आए ना, रोटी ले लो, रो जाओ जाओ जल्दी से जाओ। तो शिव जी थोड़े निराश होकर चले गए, अरे हमें कृष्ण का दर्शन नहीं मिला, क्या कर सकते हैं। तो थोड़ी से दूर वन में जाके वो प्रार्थना करने लगे कि वो आशा अपने मन में रख रहे थे कि कब मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। तो वो स्थान अभी तक प्रसिद्ध है, आशीश्वर महादेव, जो महादेव आशा करते हुए बैठे थे कि मुझे कब कृष्ण का दर्शन होगा। तो उधर क्या हो गया कि माता यशोदा ने जैसे ही श्री कृष्ण को शिव जी को जो कि योगी के रूप में आए थे अंदर नहीं छोड़ा, तो अंदर श्री कृष्ण को पता है ना, अगर शिव जी सर्वज्ञ हैं तो श्री कृष्ण शत प्रतिशत सर्वज्ञ हैं। शिव जी तो अंशेन सर्वज्ञ हैं, श्री कृष्ण पूर्णतया सर्वज्ञ हैं। तो उनको पता चला कि कौन आए हैं बाहर, और माता यशोदा ने उनको अंदर नहीं छोड़ा, मैं तो मेरे भक्तों को देखना चाहता हूं, इसलिए श्री कृष्ण रोने लग गए। इसलिए जब आप सब रोज नहीं आते हैं ना दर्शन करने के लिए, तो यहाँ राधा गोकुल थोड़े निराश हो जाते हैं कि अरे हम आए हैं यहाँ भक्तों के लिए और मेरे भक्ति नहीं आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, मेरा ये क्या है। इसलिए आप अगर राधा गोकुलानंद को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रोज आइए, दर्शन कीजिए और उनके सामने यहाँ संकीर्तन कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण रोने लग गए, तो माता यशोदा ने उनका रोना बंद करने का प्रयास किया, जैसे हर बार करती थी, कोई खिलौना देके, कोई ताली बजा के, कुछ गीत गा के, लेकिन श्री कृष्ण का रोना बंद हो ही नहीं। तो रोना सुन के सारे पड़ोस के जितने भी गोपियां थी सब भाग के आई, अरे क्या हो गया, श्री कृष्ण रोना बंद नहीं कर रहे, क्या हुआ क्या हुआ। तो सबने अपने अपने तरीके से श्री कृष्ण को रोना बंद करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण का रोना बंद ही नहीं हो। तो सारे वृंदावन में बात फैल गई, अरे श्री कृष्ण रो रहे हैं, बंद नहीं हो रहा रोना, बिल्कुल इमरजेंसी है, आपातकालीन स्थिति है। सब लोग आ गए, सारे सभा में बैठे गोप गोपियां, सब लोग इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर क्या किया जाए, देखो कैबिनेट मीटिंग आया हुआ, क्या किया जाए। सभी लोग योजना बना रहे हैं लेकिन कोई सफल नहीं हो रहा है। फिर पौर्णमासी आई, बहुत बुद्धिमान थी, बुजुर्ग और बाल यूं ही सफेद नहीं हुए थे उनकी, सब कुछ जानती थी वो क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने फिर कहा कि देखो यशोदा, क्या तुमने किसी अतिथि का अपमान किया है, तिरस्कार किया है क्या? अतिथि देवो भवो, अतिथि का सम्मान हमेशा करना चाहिए, अगर अतिथि का निरादर किया हुआ होगा तो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं परिणाम। तो सोचो कोई अतिथि आया था क्या? अतिथि तो कोई नहीं आया हमारे यहाँ, गोप गोपियाँ ही आए, सोचो ठीक से। हाँ हाँ, वो तो एक योगी आया था, योगी आया, वो हमारे लाला का दर्शन करना चाहता, हमने कहा जाओ जाओ बाहर जाओ, इतना भयानक दिखने वाला था योगी, अब वो कृष्ण देख लेता तो रो पड़ता, इससे ज्यादा रोने पड़ता, रो 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 पड़ता वो। नहीं नहीं जाओ, ढूंढो उसको, उसको ले आओ जल्दी से। तो सारे गोप गोपे इधर उधर भागे, कहाँ गए वो योगी, कहाँ गए। आखिर में वो मिले, जंगल में बैठे थे आशा लेकर कब कृष्ण का दर्शन होगा। तो भगवान कृष्ण जो हैं अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। यहाँ दुनिया में हम बड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं, कभी प्रार्थना सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, लेकिन कृष्ण हमारी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं। तो शिव जी की प्रार्थना सुन ली और उन्हें कहा, बाबा बाबा आइए आइए आइए, अब लाला का दर्शन करना है ना, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अच्छा शिव जी, अरे क्या बात है, भाग्य खुल गए हमारे, क्या हुआ पता नहीं, कृष्ण की कृपा हो गई हमारे ऊपर। तो जल्दी जल्दी से आए, और लेकिन अंदर आते वक्त माता यशोदा ने फिर भी थोड़ा चेतावनी, देखो जल्दी से दर्शन करके जाना है बाहर, ज्यादा देर रहना नहीं है, एक बार दर्शन करो और तुरंत चले जाना, हम खूब प्रसाद देंगे, माधुकरी क्या सब कुछ देंगे। तो आए शिव जी अंदर, और जैसे ही शिव जी का दर्शन किया बालकृष्ण ने, तुरंत रोना बंद हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। माता यशोदा ने सोचा, अरे ये तो बड़ा चमत्कार हुआ। फिर उनका सारा जो जो संकोच था, जो हिचकिचाहट थी, वो सब दूर हो गई। और उन्होंने सोचा कि अरे एक दर्शन करने से मेरे लाला ने इनका एक बार देखा और रोना बंद कर दिया। तो फिर यशोदा ने योगी से कहा, नहीं बाबा आप इधर ही रहो, आप ब्रज में रहो और रोज यहां दर्शन करने को आना मेरे लाला का। तो आप रहोगे यहां तो मेरा कृष्ण जो बलाला जो है वो रोएगा नहीं, तो यहां से जाना नहीं। अब शिव जी भी थोड़े चालाक हो गए थे ना, उनको भी पता चला कि अब थोड़ा हमारी भी बात चलेगा यहाँ पे, तो क्यों ना पूरा फायदा उठा लें। हाँ माता हम आएंगे, लेकिन हमारी भी तो शर्त है। शर्त है? बोलो बोलो क्या शर्त है? रोटी चाहिए, क्या चाहिए हमें? शर्त, मेरा शर्त ये है कि रोज जब ये लाला प्रसाद खाएगा, भोजन खाएगा ना, तो उसका उच्छिष्ट जो है मुझे देना चाहिए। ठीक है दे देंगे दे देंगे। और आज तो मंदिर है, वहाँ नंद बाबा का मंदिर है जहाँ कृष्ण भी है, जो कृष्ण को भोग चढ़ता है, तो सबसे पहले महाप्रसाद की थाली जो है शिव जी के मंदिर में भेजा जाता है, शिव जी को अर्पण किया जाता है। तो भगवान शिव श्री कृष्ण का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अगर हमें देवताओं को कुछ अर्पण करना भी है तो भगवान कृष्ण का महाप्रसाद अर्पण करना चाहिए। केवल भोग देवताओं को अर्पण करके देवताओं का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर बताते हैं कि ये वर्जित है भक्तों के लिए, भक्तों को ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर देवताओं का सम्मान करना ही है तो उनको कृष्ण का प्रसाद लेकर अर्पण करना चाहिए, फिर वो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे अंदर कृष्ण भक्ति जागृत हो। तो फिर शिव जी ने अपनी गारंटी ले ली आजीवन कि अब मुझे रोज कृष्ण प्रसाद मिलेगा, महाप्रसाद मुझे मिलेगा। और इस प्रकार से आज भी ये प्रथा चलती है नंदगांव में, भगवान कृष्ण का प्रसाद शिव जी को पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से शिव जी का स्थान बहुत विशेष है, हमारे लिए सम्माननीय है, परंतु उनका स्थान स्वतंत्र नहीं है। और इस बात का ज्ञान शिव जी को यहाँ पर हो गया है। तो शिव जी इतने महान होने के बाद भी वो कभी माया में फंस सकते हैं भगवान की योजना से, तो हम लोगों का स्थान क्या है? हम लोगों को कितना सावधान रहना चाहिए, हम लोगों को कितना सतर्क रहना चाहिए। शिवजी ने जब सुना कि भगवान विष्णु ने या कृष्ण ने एक मोहिनी रूप धारण किया है जो कि बहुत सुंदर है, शिव जी इस रूप का दर्शन करना चाहते थे कि ये भी भगवान का अद्भुत रूप है, मैंने आज तक ये रूप तो नहीं देखा। मैंने कितने सारे रूप देखे, मत्स्य अवतार, कुरुम अवतार, ये अनेक अवतार मैंने देखे, लेकिन ये मोहिनी अवतार, एक स्त्री के रूप में अवतार लिया है भगवान ने, ये मैं देखना चाहता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण का मतलब ये है कि सबसे वो आकर्षक है, सर्व आकर्षक है, सबसे सुंदर है। तो जब वो स्त्री का रूप भी धारण करते हैं तो ऐसा सौंदर्य है जो कि अतुलनीय है, जिनके सामने कोटि कोटि लक्ष्मियां भी कुछ नहीं है। तो शिव जी आतुर थे, उत्सुक थे देखने के लिए, ये विशेष रूप मैंने कभी नहीं देखा, तो चलो मुझे देखने दो। और जब देखने आए तो फिर भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान विष्णु, उनको बताना चाहते थे और उनके माध्यम से हम सबको सिखलाना चाहते थे कि हमें कितना सावधान रहना चाहिए। और जब मोहिनी मूर्ति के पीछे शिव जी गए तो मोहिनी मूर्ति सब जगह घूमते फिरते गई, जितने भी ऋषि मुनि थे सबके आश्रमों से होकर गुजर के गई, जानबूझकर आश्रम के अंदर से गई, अलग 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 जगह आश्रमों में जितने भी आश्रम थे। और इसका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो सिखलाना चाहते थे सारे ऋषि मुनियों को कि देखो शिव जी भी मेरे माया के परे नहीं है, तो आप लोग तपस्या कर रहे हो आप लोग भी बहुत सावधान रहना। इसलिए अलग अलग आश्रमों के माध्यम से चल के वो मोहिनी रूप चली गई बाहर। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखे। आजकल का जो वातावरण है तरह तरह के प्रदूषणों से भरा हुआ है, हर तरह से, हर दृष्टि से, स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से यहां प्रदूषण है, और सबसे गहरा प्रदूषण मन का प्रदूषण है। और यहां पर आजकल इतना भोग के प्रति झुकाव हो गया है समाज में कि कोई भी व्यक्ति विचलित हुए बिना रह नहीं सकता, ये वातावरण बन गया है। अजामिल की चर्चा जब होती है छठे स्कंद में तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये अजामिल की कथा इतनी बड़ी कथा बन गई श्रीमद् भागवत में, क्योंकि उस जमाने में बेचारे अजामिल एक कहीं थे, आजकल तो सैकड़ों अजामिल सड़कों पे घूम रहे हैं। कहने का मतलब है कि विषय भोग के या विषयों के शिकार हर व्यक्ति आजकल हो चुका है कलयुग में, तो कैसे इससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। अगर हमें वास्तव में इस माया को पार करना है और इन दुनिया के अलग 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 तरह के आकर्षणों को पार करके भगवान के धाम में पहुंचना है शाश्वत जीवन के लिए, शाश्वत आनंद के लिए, तो हमें केवल श्री कृष्ण के भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, अवश्य वो हमें हमारी रक्षा करेंगे। महाराज कुलशेखर बड़े भयानक वर्णन करते हैं इस भौतिक जगत का, और इस भौतिक जगत की तुलना एक भीषण समुद्र से करते हैं जिसमें तरह तरह के जलचर प्राणी हैं जो खाने के लिए हमारे आ रहे हैं, और बड़े बड़े लहरें हैं जो हमें उठाकर इधर उधर फेंक रहे हैं, और ये काम वासना के जो पवन है वो बह रही है, हमें उठा के ले जाती है। और इस प्रकार से बहुत ही एक ऐसा वर्णन करते हैं जिससे व्यक्ति घबरा जाता है। अनेक श्लोकों में ऐसा वो मुकुंद माला स्तोत्र में वर्णन करते हैं। तो व्यक्ति अगर सोचे कि अरे इतना भयानक है, केवल डरा के छोड़ते नहीं है महाराज कुलशेखर, शास्त्र में ये डरावना जो वर्णन आता है ये केवल काल्पनिक नहीं है, वास्तव में सत्य है। और शास्त्र में केवल हमें डरा के छोड़ते नहीं है, डरा के हमें उपाय भी देते हैं। फिर महाराज कुलशेखर कहते हैं चिंता नहीं करना, डरो नहीं, ऐसा नहीं कि तुम पैरालाइज हो जाओ बिल्कुल, अरे ऐसे माया है या क्या कर सकते, कुछ नहीं, चलो कुछ जीवन में है ही नहीं कुछ, नहीं ऐसा नहीं है। महाराज कुलशेखर कहते हैं एक उपाय है और वो है श्रीमती भक्ति देवी। ये भक्ति देवी को स्वीकार करो और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करो, ये भक्ति देवी तुमको तैर के ले जाएगी इस विषम जहरीले सागर से। इसलिए अगर हम अच्छी तरह से भक्ति के पथ को स्वीकार करेंगे, श्रवण कीर्तन आदि हमारी साधना को हम पक्का रखेंगे, रोज भगवान का दर्शन करेंगे, रोज 16 माला ध्यान पूर्वक जप करेंगे, रोज हम भागवत को सुनेंगे, गीता को सुनेंगे, रोज प्रभुपाद की किताबों को पढ़ेंगे, रोज हमारी नियमित रूप से सेवा करेंगे और जितने भी अन्य नियम हैं, जैसे कि अभक्तों का ज्यादा संग नहीं करना, केवल जितना आवश्यक है उतना संग करना, जानबूझ के ऐसे स्थानों में नहीं जाना जहां भौतिक आकर्षण बहुत ज्यादा है, ऐसे अगर सावधानी से हम रहेंगे, हमारी भक्ति के विधि विधानों का पालन हम अच्छी तरह से करेंगे, तो भक्ति देवी हमारी रक्षा करेगी। हम जिस धर्म की रक्षा करेंगे पालन करके, वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षतः। इसलिए अगर हमें इस विषम सागर से, भव सागर से बचना है, तो भक्ति देवी का आश्रय लेना चाहिए, तो फिर हम आसानी से हमारे इस जीवन को कटा सकते हैं आनंद से। और जब इस जीवन का अंत हो जाएगा तो हम भगवान श्री कृष्ण के पास उनके धाम में चले जाएंगे, पुनः कभी यहाँ जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।